पृष्ठ संख्या 28 अध्याय 4 उपनिषद का धर्म दर्शन। उपनिषदों में समस्त भारतीय दर्शन का स्रोत निहित है। दार्शनिक विकास के दृष्टिकोण से उपनिषद इस युग के प्रतिनिधि और परिपक्व रचनाओं के रूप में माने जाते हैं। उपनिषद ब्राह्मण साहित्य के अंतिम भाग हैं, जिनमें भारतीय तत्व चिंतन की अनुपम सामग्री भरी पड़ी है। न केवल आस्तिक संप्रदाय वरन सभी नास्तिक संप्रदाय भी उपनिषदों से ही निकले प्रतीत होते हैं। वेदांत एवं ब्रह्म सूत्र के साथ साथ वेदांत के सभी संप्रदायों का एकमात्र केंद्र उपनिषदों की समन्वयात्मक विवेचना है। यही कारण है कि रामानुज, शंकर आदि विद्वानों ने ब्रह्म सूत्र एवं उपनिषदों पर भाष्यों की रचना की। तैत्तरीय उपनिषद का यह मंत्र सवा एषः पुरुषोः अन्न रसमयः, चार्वाक ऐसे सुप्रसिद्ध जड़वाद के समर्थकों को प्रमाण के रूप में उद्धृत करना पड़ा। ठीक इसी तरह तैत्तरीय उपनिषद के मंत्र असद्धा इदमग्र आसीत ततो वैसद अजायत से शून्यवादी बौद्ध दार्शनिक प्रमाण प्राप्त करते हैं। तंत्रवार्तिक के कथन विज्ञान मात्र क्षणभंग नैरात्म्यवादा नामापि उपनिपभवत्वम विषयेषु आत्यंतिकं रागं विनिवर्तयितुमिति उपपन्नं सर्वेषां प्रमाण्यम् से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद, क्षणभंगवाद, आत्मवाद तथा वैराग्यवाद उपनिषद से ही निकले हैं। कुमारिल भट्ट ने भी इस मत को प्रमाणित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उपनिषद एक ऐसा उद्गम स्थल है जहाँ से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, विचार रत्न और तत्व ज्ञान निरंतर प्रवाहित होकर भारतीय परंपराओं को अक्षुण रखते हैं। यहीं से विविध दार्शनिक संप्रदायों को अपने चिंतन का आधार मिलता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है उप गुरु के पास, नी शिष्य का, सद बैठना। इस पीछे इसका अभिप्राय रहस्यमय ज्ञान लिया गया। शंकर ने इसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान बताया है। इस प्रकार उपनिषद से अभिप्राय एक ऐसे ज्ञान से है जो मनुष्य को ईश्वर के पास पहुंचावे अथवा जो शिष्य को गुरु के समीप पहुंचावे। शायद दूसरे अर्थ का प्रयोग इसलिए हुआ कि उपनिषदों के सिद्धांत गूढ़ रहस्यमय रखे जाते थे तथा इसे कुछ चयनित शिष्यों को ही बताया जाता था जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करते थे। इसी से उपनिषद का अर्थ यह भी बताया गया है कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या आत्मविद्या। इसके अध्ययन तथा मनन के से मानव भ्रम से उबर कर एक सत्य की ओर बढ़ता है। यह वेद का अंतिम भाग है जिसकी गणना आरण्यकों के साथ की जाती है। तभी शायर ने इसे आरण्यक कहा है। इसी से इसे वेदांत भी कहते हैं। यही वेदों का मूल है तथा जिस उनकी शिक्षाओं का सार है। यही कारण है कि डाउशन ने इसका अर्थ रहस्यमय उपदेश बताया है। उपनिषद वाक्य महाकोश में इनकी संख्या 232 दी गई है, पर आज सभी प्राप्य नहीं है। अतः साधारणतया 108 उपनिषदों की ही चर्चा इस समय की जाती है। इनमें से भी ईष्ट, केन, कठ, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, मुंडक, छांदोग्य, वृहदारण्यक आदि 10 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। यह किसी एक व्यक्ति की कृति नहीं है, क्योंकि एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आया है। आध्यात्मिक विषयों के होने के कारण इनके रचयिता भी आध्यात्मवादी ही थे। भौतिकवादिता से दूर रहने के कारण इनके रचयिता ने अपने नाम को महत्वहीन समझ इनमें कहीं अपना नाम नहीं दिया है। इनका स्वरूप काव्यात्मक है और शैली भावात्मक। इनकी रचना गद्य और पद्य मिश्रित है। इनके विषय धार्मिक और अधिक दार्शनिक है, पर इनके दर्शन में क्रमबद्धता नहीं है। इसी से इनके दार्शनिक विचारों को संकलित करने में कठिनाई होती है। साथ ही इनके प्रतिपाद्य विषयों में ज्ञान की धारा में भिन्नता मिलती है, पर इनका मूल तत्व है दर्शन। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ एक ऐसे ज्ञान से है जो ईश्वर के समीप पहुंचावे अथवा जो गुरु के समीप पहुंचावे। शायद दूसरे अर्थ का प्रचलन इसलिए हुआ कि उपनिषदों के सिद्धांत गुण रखे जाते थे तथा वह ज्ञान कुछ चुने हुए शिष्यों को ही दिया जाता था, जो गुरु के समीप बैठकर उस रहस्य का ज्ञानार्जन करते थे। यही कारण है कि उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया रहस्यमय ज्ञान या आध्यात्म विद्या बताया गया है। वैदिक दर्शन का सार होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। इनमें कर्म कांड के विरोध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवाज उठाई गई है और ब्रह्म तत्व को ही आधारभूत ज्ञान स्वीकार किया गया है। औपनिषदिक तत्व चिंतन की आधारशिला के रूप में चरम सत्ता की कल्पना की गई है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, किंतु उसके स्वरूप का ज्ञान और कथन सामान्य विषय नहीं है। मुंडक उपनिषद में प्रश्न है कि क्या वह क्या है जिसे जानने से विश्व का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्म श्वेताश्वर उपनिषद में तत्संबंधी प्रश्न निम्नवत है। किम कारणम ब्रह्म कुतः स्मजाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वरतामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। सृष्टि का कारण क्या है? लोग कहाँ से पैदा हुए? वे कैसे जीते हैं? क्या उनका आधार है? दुखों में उन्हें कौन डालता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मज्ञानी ही दे सकता है। इनके उत्तर में निम्न बातें कही गई हैं। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, यहाँ कोई विविधता नहीं। नेह नानास्ति किंचन, इस सत्य के लिए उपनिषद में दो शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, ब्रह्म और आत्मा। इन्हीं दो शब्दों का ज्ञान ही उपनिषद का रहस्यमय ज्ञान है, जिसके ज्ञात होने से समस्त समस्याओं का हल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म एवं आत्मा भारतीय दर्शन के दो आधार स्तंभ हैं। वस्तुतः उपनिषदों में केवल एक ही प्रश्न का समाधान है, और वह यह कि ब्रह्म एवं आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तव में ब्रह्म और आत्मा दो ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिन पर उपनिषदों की संपूर्ण दार्शनिक विचारधारा आधारित है। ब्रह्म एवं आत्मा के स्वरूप का विवेचन ही उपनिषदों का केंद्रीय दर्शन है। अतएव उपनिषदों के केंद्रीय दर्शन ब्रह्म एवं आत्मा के स्वरूप की विवेचना निम्नवत की जा सकती है। ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्म शब्द स्तुति मंत्र या मननात्मक प्रार्थना के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बृह धातु से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ है वृद्धि या स्तुति करना। यज्ञ में मंत्र प्रयोग से क्रमशः इस शब्द के अर्थ और प्रभाव का इतना विकास हो गया कि उसे वृद्धि का मूल तत्व स्वीकार किया गया। पर यह विचित्र है कि उपनिषदों का दृष्टिकोण ब्रह्म के विषय में एक नहीं है। इसी से भाष्यकारों ने उसमें वर्णित ब्रह्म को विभिन्न रूपों तथा अद्वैत द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि को अपने अपने मतों से आंक कर उसकी पुष्टि के लिए तर्क दिया है। पर इस पचड़े से ऊपर उठकर हमें यहाँ यह जानना है कि इनमें ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या बताया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म की दी गई व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म सब सत्ताओं का मूल और चित चैतन्य का आधार तथा आनंद सभी सुखों का मूल स्रोत है। समस्त सांसारिक आनंद उसी के आनंद के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। बृहंतो ही अस्मिन् गुणा इति ब्रह्म, के आधार पर ब्रह्म शब्द का आशय एक ऐसे परम देव से लिया जा सकता है जिसकी सत्ता एवं अनंत शक्ति का विश्व के सभी पदार्थों का अस्तित्व एवं परिचालन आश्रित है। ऋग्वैदिक ऋचाओं से ऋषियों के हृदय में देवताओं की शक्तियों के प्रति उत्पन्न हुए संदेह का आभास एवं एक ऐसी शक्ति के अन्वेषण का प्रयत्न दिखलाई पड़ता है जिसकी प्रेरणा से समस्त देवता एवं प्रकृति कार्यरत रहते हैं। ऋग्वैदिक मंत्र कस्मै देवाय हविषा विधेम से स्पष्ट विदित होता है कि भक्तों के हृदय में इस बात का संदेह उत्पन्न हो गया था कि किस सर्वोच्च देव के लिए हविष अर्पित किया जाए। यजुर्वेद संहिता में विष्णु की सर्वव्यापी स्थिति का वर्णन किया गया है। इसका आशय यह है कि संहिताओं में एक सर्वव्यापी एवं अक्षर शक्ति की कल्पना आरंभ हो गई थी। केनोपनिषद के देवता एवं यज्ञ संबंधी आख्यायिका से स्पष्ट विदित होता है कि सभी देवताओं की शक्तियां अनंत इसी ब्रह्म पर निर्भर है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा न केवल उपनिषदों की ही बात है वरन इस प्रश्न के उत्तर की खोज ब्राह्मणों एवं आरण्यकों में भी की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों से ही ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व की कल्पना आरंभ हो गई थी। इस तरह यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्रह्म का मित्र बृहस्पति वायु आदि देवताओं के साथ एकाकार होने की कल्पना की गई और उसके बाद यह स्वीकार किया गया कि इसी ब्रह्म ने सभी देवताओं की को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न करके पृथ्वी अंतरिक्ष एवं आकाश आदि तीनों लोकों को अग्नि वायु और सूर्य इन तीनों प्रमुख देवताओं की अधीनता में बांट दिया। आरण्यकों में हमें ब्रह्म के तीन रूप दृष्टिगत होते हैं। स्थूल रूप जो पृथ्वी से अविच्छिन्न है, सूक्ष्म रूप जो मन से अविच्छिन्न है और ब्रह्म का वह शुद्ध रूप जिसका प्रतिपादन बाद के वेदांत ग्रंथों में हुआ है। तैतरीय आरण्यक में ब्रह्म को सत या असत दोनों रूपों में वर्णित किया गया है। इसमें उसे सत्य ज्ञान एवं अनंत आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। भृगु ऋषि एवं वरुण देवता के प्रश्नोत्तर को तैतरीय उपनिषद में निम्नवत वर्णित किया गया है। भृगु ऋषि द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करने पर वरुण देवता उत्तर देते हैं कि जिससे यह सभी भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सभी भूत रहते हैं तथा जिसमें ये सभी भूत अंत में विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है, उसी की जिज्ञासा करो। इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप भृगु ऋषि क्रमशः विचार करते हैं कि जीव के लिए अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है और आनंद ब्रह्म है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म विषयक ये पांचों विचार ब्रह्म रूपी प्याज की परतों की भांति है। जैसे जैसे प्याज की ऊपरी परतें क्रमशः निकलती जाती हैं, वैसे वैसे प्याज के अंदर का भाग साफ दिखाई पड़ने लगता है, किंतु जैसे इन परतों के अतिरिक्त प्याज कुछ नहीं है, वैसे ही ब्रह्म भी इन कोशों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म का सबसे ऊपरी कोश अन्नमय कोश है, उसके बाद क्रमशः प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। अंतिम कोश आनंदमय कोश है, जिसके भीतर आनंद स्वरूप ब्रह्म विराजमान है। यह वही ब्रह्म है जिसको जान लेने पर सब कुछ विदित हो जाता है, जिसका ज्ञाता अभय हो जाता है और वह भी स्वतः ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म का यह रूप अवर्णनीय है, अतएव ब्रह्म को मन वाणी तथा इंद्रियों से अगोचर कहा गया है। इसे उसे ही रस कहा गया है, रसो वही रसः। इसे उसे ही रस कहा गया है, रसो वही सह, वही परमात्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद में ब्रह्म के दो रूप मिलते हैं, द्वेवाव ब्रह्मणा रूपे मूर्त चैवामूर्त चमर्त्यम चामृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च। अर्थात मूर्त और अमूर्त, अमर्त्य और अमृत, स्थित और चर तथा सत और त्यत। मूर्त मर्त्य स्थित तथा सत ब्रह्म को अपर ब्रह्म या अवर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है तथा अमूर्त अमृत चर और त्यत ब्रह्म को परम पर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म के दोनों रूपों का ज्ञान होता है। ब्रह्म का दोनों रूप सत एवं त्यत मिलकर सत्य होता है। उपनिषद का कथन है कि जो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है वह ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर मुक्ति प्राप्त करता है। याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हैं, आत्मा सभी आनंदों का मूल स्रोत है। इसका प्रमाण यह है कि आत्मा से बढ़कर किसी को और कुछ प्रिय नहीं होता। उपनिषद का कथन है कि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आत्मा के पारमार्थिक रूप का साक्षात्कार होने पर ही हो सकता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों का यही मुख्य सिद्धांत है जिसमें आत्मा एवं ब्रह्म की कल्पना पूर्ण रूप से विकसित दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा परम तत्व के रूप में की गई है। परम तत्व ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है, वही सभी का आधार है और लय होने पर फिर सभी उसी में समाहित हो जाते हैं। तैतरीय उपनिषद, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तामि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मनेति। इसी परम तत्व को बाह्य रूप से ब्रह्म तथा आंतरिक रूप से आत्मा कहते हैं। अतः आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये एक के ही दो नाम हैं, दोनों अभेद हैं। इस प्रकार यह अद्वैत है, इसीलिए इसको ब्रह्मात्म तत्व कहा जाता है। जो भी इस ब्रह्मात्म तत्व या परम तत्व को जान लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आत्मा जन्म मरण से रहित है, वह शारीरिक दुखों से ऊपर है, उसका स्वरूप परब्रह्म का है, सच्चित और आनंद है। पर जो उसके सत्य रूप को नहीं पहचानते वे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग दुख जीवन मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, यही शरीर का बंधन है। पर ज्ञान के द्वारा सत्य के भास होने से जब अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य बंधन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति ईश्वर या ब्रह्म का स्वरूप है, उसी से वह उद्भाषित होती है और उसी में लय होती है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जो इस सत्य को नहीं पहचानता और संसार में दूसरे तत्वों को भी देखता है वही जीवन मरण के चक्र में पड़ा रहता है। इसी से ब्रह्म को भी सर्वशक्तिमान माना गया है, उसी की आंशिक शक्ति से संसार है। सभी सांसारिक वस्तुओं का उदय स्थिति और लय उसी की शक्ति से होता है। तत् जला नीति शांत उपासित, वह परम ज्योति है, उसी के प्रकाश से संसार प्रकाशित है। इसके दो रूप हैं, ब्रह्म का एक रूप अलक्षण अचिंत्य और अव्यक्त आदि है, यही रूप निर्गुण है, इसे ही ब्रह्म का रूप कहते हैं। इसका कोई भी लक्षण नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह लक्षणों से परे है। उसका कोई रूप नहीं है कि वर्णन किया जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है कि उसमें उसे बांध कर देखा जाए, उसका कोई एक गुण नहीं है कि उसका विश्लेषण किया जाए। अतः वह सभी विश्लेषणों से ऊपर है, अर्थात वे विशेषण उसके लिए निषेधात्मक हैं। जैसे न वह वायु है, न छाया है, न बाहर है, न अंदर है, न तेज है, न प्राण है आदि। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसमें है ही नहीं, वरन वह उनसे बहुत आगे है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। परब्रह्म का दूसरा रूप है सगुण, जो मन तथा बुद्धि के से गोचर है। इसे अपर ब्रह्म कहते हैं। वह सलक्षण है, पर दोनों एक हैं। ये एक ही के दो रूप हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करके ब्रह्म ने इसकी संपूर्ण रचना में प्रवेश किया। इस प्रकार वह सृष्टि का अंतर्यामी व्यवस्थापक है। चूंकि वह सब में व्याप्त है, पर उसका स्वरूप अलग से उनमें उद्भाषित नहीं होता, अतः उसे हम सर्वव्यापक कहते हैं। पर वह अपनी सत्ता अलग बनाए हैं, इसलिए वह अतींद्रिय भी है। चूंकि सभी सृष्टि के उपादान उसी को केंद्रित कर बनते हैं, इसलिए वह प्रकृति की आत्मा है। पर इस प्रकार ब्रह्म की ही सत्ता जीव और जगत या जड़ और चेतन में विद्यमान होती है। इसलिए परमात्मा या ब्रह्म परम सत्य है। वह सांसारिक सत्य से परे है, ब्रह्म काल के अधीन नहीं है। वह भूत और भविष्य का स्वामी होते हुए भी कालातीत है। वह दिशाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे है। वह एकवादी है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। वह अकेला सत्य है, वह स्वयं परिवर्तन विहीन है। स्वयं वह अचल होकर भी सृष्टि को चलायमान रखता है। ब्रह्म को लोग अज्ञेय बताते हैं, क्योंकि उपनिषदों में उसका विशेषण निषेधात्मक है, जैसे वह न जल है न अग्नि है आदि। पर वही आत्मचेतन है, सभी इंद्रियों को उसी से शक्ति मिलती है, इसलिए वह अनंत है। वही ज्ञान का स्रोत है, उसके बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता बताई गई है। इस प्रकार निर्गुण होकर भी वह सलक्षण है, वही सच्चिदानंद है। उसके तीन लक्षण हैं, विशुद्ध सत, विशुद्ध चित और विशुद्ध आनंद। इनके साथ विशेषण विशुद्ध इसलिए जोड़ा गया है कि सांसारिक सत, चित और आनंद से वह अलग है। इसी से उसे नेति नेति अर्थात वर्णनातीत कहते हैं। दो, आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ सांस या प्राण स्वीकार कर लिया गया है, जो कालांतर में विकसित होकर मनुष्य की आत्मा या जीव तत्व का द्योतक बन गया। आत्मा को मनुष्य के प्राण तत्व के रूप में मानने की बात अथर्ववेद में स्पष्ट व्यक्त की गई है। उपनिषद काल में आत्मा को शाश्वत सत्य स्वीकार किया जाने लगा था, जो देह मन सांस इंद्रिय आदि से भिन्न और परे कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद काल में विचारों का केंद्र वैदिक देवताओं से हटकर मनुष्य की आत्मा पर केंद्रित हो गया। उपनिषदों में आत्मा का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है कि उससे बाहरी विशेषताएं छट जाए और केवल असली तत्व यही रह जाए। शरीर प्राण मन बुद्धि और उनसे उत्पन्न होने वाले आनंद की समीक्षा कर यह स्वीकार किया गया है कि ये सब आत्मा के क्षण भंगुर परिवर्तनशील रूप हैं, आत्मा के मूल तत्व नहीं हैं। ये सभी कोष बाहरी आवरण मात्र हैं, जिनके भीतर असली तत्व छिपा रहता है। अतएव हम देखते हैं कि उपनिषदों में आत्मा को अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय एवं आनंदमय कोशों से परे एक स्वप्रकाश चैतन्य के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। किसी विषय का जो बोध होता है वह इसी चैतन्य का एक सीमित प्रकाश है। शुद्ध चैतन्य किसी विषय की सीमा से आबद्ध नहीं होने के कारण अनंत या सर्वव्यापी है। इस सर्वव्यापी आत्मा के विषय में यह कथन उपनिषदों से प्राप्त होता है कि विश्व के सभी पदार्थ इसी के गर्भ में विलीन हो जाते हैं, इससे बहिर्भूत कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि कहा गया है, सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय स्रोतमय पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजो मयो तेजो अमयो तेजोमय काममयो अकाममय क्रोधमयो अक्रोधमयो धर्ममयो अधर्ममयः सर्वमयः इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि सत्य अनंत और ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो आत्मा मनुष्य में है वही सभी भूतों में भी है। अतएव आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा के विषय में कठोपनिषद का कथन है कि एषु सर्वेषु भूतेषु गुढोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अर्थात आत्मा सभी वस्तुओं में निहित है और प्रकट रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु जो सूक्ष्मदर्शी है वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसे देख सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसार के जितने स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं सभी आत्मा ही के रूप हैं। अतएव सभी वस्तुओं का सार आत्मा ही है। उपनिषदों से सबसे विशेष महत्व आत्मा ही को दिया गया है, क्योंकि इसके समान प्रिय वस्तु दूसरी नहीं स्वीकार की गई है। उपनिषदों का कथन है कि आत्मा प्राण अपान व्यान उदान समान आत्मा प्राण अपान व्यान उदान इन वायुओं के रूप में हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करती है। यही वह आत्मा है जो भूख प्यास शोक मोह जन्म तथा मरण से हमारा उद्धार करती है। इसी के ज्ञान से पुत्र धन तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा से विरक्त होकर मनुष्य परिव्राजक या सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। अतः आत्मा पूर्ण और अखंड है। यही कारण है कि सत असत छोटा बड़ा समीप दूर अंतः बाहर आदि सभी विरुद्ध धर्मों का यह आधार है। बृहदारण्यक उपनिषद से ज्ञात होता है कि सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान क्षत्रियों को प्राप्त होता था और बाद में ब्राह्मणों ने इसे प्राप्त किया। इससे स्पष्ट है कि कोई भी ब्रह्म को जान सकता है यदि वह सर्वता अपनी तपस्या के अनुसार इसको पाने का अधिकारी है। वस्तुतः आत्मा का ज्ञान वेदों के अध्ययन से नहीं हो सकता है और न ही अच्छी धारणा शक्ति द्वारा प्राप्त हो सकता है। साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करती है। उपनिषदों में भी यही कहा गया है, नायम मात्मा प्रवचनेन लव्यो न मेधया न बुधया श्रुतेन यमे वैश वृडूति तेन जम भयरस्तस्यैष आत्मा विवृडूते तानुम स्वाम। यह परमात्मा का अनुग्रह है, परंतु आत्मा का ज्ञान अंतःकरण की परिशुद्धि इसके द्वारा प्राप्त होती है। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति से परे तुरीय नामक एक चतुर्थ अवस्था को स्वीकार किया गया है। इस तरह स्पष्ट होता है कि उपनिषदों में आत्मा को स्वप्रकाश चेतना के रूप में माना गया है। इसके साथ ही साथ आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता के कारण ब्रह्म के गुणों का आत्मा में समावेश औपनिषदिक दर्शन का विषय है। उपनिषदों में आत्मा को पुरुष कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है कि पुरुष असंग है। इसका अर्थ कि पुरुष अनियंत्रित है, वह कारण कार्य के संबंध से मुक्त है। उपनिषदों में पुरुष को सर्वव्यापी भी बताया गया है। इसको महतो महीयान अर्थात बड़े से बड़ा कहा गया है। वह अनंत एवं अरिमा दोनों ही स्वीकार किया गया है। इसमें भी पुरुष को व्याप्त माना गया है। इस तरह पुरुष का स्वभाव अंतर्यामी बताया गया है। वह सर्वांतर है, इस रूप में वह सूक्ष्म है, इसलिए इसे अड़ोरणीयान स्वीकार किया गया है। आत्मा के विवेचन को औपनिषदिक शैली में नेति नेति एषा आत्मा कहा गया है। आत्मा अविषय है, कोई विषय आत्मा नहीं स्वीकार किया जा सकता। अतः जिस विषय को आत्मा स्वीकार किया जाता है उसी को बाद में नेति आत्मा अर्थात आत्मा नहीं है ऐसा माना जाता है। विवेचन की यह शैली व्यतिरेक शैली है, यही अपवाद की शैली का जनक है। कठोपनिषद के अनुसार अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचक्षिरे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा को एक ओर अज्ञेयवाद के दोष से बचाया गया है तो दूसरी ओर उसे विषय से परे रखने का प्रयास किया गया है। उपनिषद के ऋषि का कथन है कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जो विदित है उससे आत्मा भिन्न है और जो अविदित है उससे भी आत्मा भिन्न है। वास्तव में आत्मा ज्ञाता है। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा है विज्ञातार मरे मरे केन विजानियात, अर्थात मैत्रेयी ज्ञाता को कौन जान सकता है। इसका तात्पर्य है कि कोई उसे नहीं जान सकता, किंतु क्या ज्ञाता अज्ञात है? नहीं, वह ज्ञाता है और ज्ञात्री रूप से ज्ञात है। इस प्रकार उपनिषद में आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। अन्योन्यतर आत्मा आनंदमय, इसे अजन्मा शाश्वत और नित्य कहा गया है। यह चैतन्य है पर सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है। इसका स्वरूप दो प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। वह स्वयं सूक्ष्म होकर भी इंद्रियों को उसकी क्रिया के संपादन में शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार वह शरीर में नख से तक व्याप्त है पर स्वयं स्वतंत्र है। आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है यह विवादास्पद है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसे चावल या जौ के समान सूक्ष्म होकर हृदय में स्थित बताया गया है। दूसरे उपनिषद में उसे हृदय में अंगुष्ठ मात्र का स्थित बताते हैं। कोई उसे मस्तिष्क में भी स्थित बताते हैं। यह सूक्ष्म में भी है और महान भी है। जीवात्मा की चार अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उपनिषद ने जीव के पांच कोष माने हैं, पर जो आनंदमय कोष है वही ब्रह्म है। इसी से आनंद ही परम सत्य है। यही आत्मा के ज्ञान से जीवात्मा बंधन से मुक्त होता है। पर आत्मा के विषय में उपनिषदों में परस्पर विरोधी विवरण प्राप्त होते हैं। एक उपनिषद कहता है कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है। वह दूसरों के अनुसार चल भी है और अचल भी है। वह सभी के भीतर है और बाहर भी है, निकट भी है और दूर भी है, महान भी है और सूक्ष्म भी है। परंतु इन परस्पर विरोधी विवरणों का समाधान भी वही है जहाँ यह कह देते हैं कि आत्मा से अलग कोई ज्ञाता या श्रोता नहीं है, प्रकाश नहीं है। चूंकि इसका विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इसलिए इसके संबंध का विवरण विरोधी लगता है। यहाँ आत्मा और विश्वात्मा को अभेद माना गया है। इसी से धर्म के कर्मकांड पक्ष का विरोध उपनिषदों में है। यहाँ आत्मदर्शन एवं आत्मज्ञान की बात की गई है। देवोपासना को इसलिए सत्य नहीं माना गया है, नेदम यद यदमुपाशते। इस नेदम यद यदमुपाशते, इस प्रकार देवता का प्रकाश नहीं आत्मा का प्रकाश देखना ही धर्म की चरमता उपनिषदों में स्वीकार की गई है। जीवात्मा और आत्मा का भी विचार उपनिषदों में किया गया है। जीवात्मा के मुक्तावस्था की कल्पना यहाँ है। यही स्थिति मोक्ष या बंधन से मुक्ति की होती है। जब तक मनुष्य की आत्मा सांसारिक क्रियाओं में लिपटी रहती है तब तक वह बंधन की स्थिति में होती है। बंधन मुक्त स्थिति ही मोक्ष है। यह ज्ञान से ही संभव है। यह स्थिति है जहाँ जीवात्मा और ब्रह्म का तादात्म्य देखा जा सकता है। इसी से अहम ब्रह्मास्मि तथा तत्त्वमसि की बात उपनिषदों में की गई है। यही चेतना का आधार है, इसलिए जीव और आत्मा में अंतर है। जीव वैयक्तिक आत्मा है और आत्मा परम आत्मा है। आत्मा भोग से परे है, जबकि जीव का धर्म भोग है। जीव अज्ञानी है पर आत्मा ज्ञानी है। जीव बंधन में है पर आत्मा निर्मुक्त है। आत्मा के ज्ञान के कारण ही जीव बंधन मुक्त हो जाता है। जीवात्मा का ही पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। जीवात्मा अनंत ज्ञान से रहित है, पर आत्मा परमात्मा का ही रूप है, इसलिए वही ज्ञान स्रोत। इस प्रकार आत्मा जीवात्मा से भिन्न है पर परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए जीव की चार अवस्थाओं में से तुरीयावस्था ही ब्रह्म की है, तथा पांच कोशों में से आनंदमय कोश ही ब्रह्म है। यहाँ जीवात्मा बंधन मुक्त होकर आत्मा से अभिन्न होती है और इस प्रकार वह ब्रह्ममय हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म की भिन्नता ही उपनिषद की शिक्षा का सार है। आत्मा वही ब्रह्म अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तू वही है जो यह है। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम् आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे अनेक वाक्य उपनिषदों में मिलते हैं जो आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता का विवेचन करते हैं। इसी से दोनों को सच्चिदानंद, सच्चिद और आनंद तथा सत्य शिव और सुंदर माना गया है। यही आत्मा तुरीयावस्था में पहुंचकर ब्रह्म होता है। इसी ब्रह्म का स्वरूप जागृत अवस्था में आत्मा होती है। वही शरीर के लिए आत्मदृष्टि में आत्मा है जो व्यापक दृष्टि से ब्रह्म है। विषयी आत्मा है और विषय ब्रह्म है, दोनों के बीच तादात्म्य है। इसी से डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, ब्रह्म ही आत्मा है। वही ब्रह्म अंतरात्मा में विद्यमान होने पर आत्मा का रूप धारण करता है, पर जैसे ही वह ब्रह्म के रूप में मिलता है वैसे ही उससे हृदय की सभी ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथश्चिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्म और आत्मा का संबंध। औपनिषदिक दर्शन में ब्रह्म और आत्मा एक सिक्के के ऐसे दो पहलू हैं जो एक रूप में स्वीकार किए गए हैं, जिसमें एक के अभाव में दूसरे की कल्पना निराधार हो जाती है। वास्तव में उपनिषदों में एक ऐसे सर्वव्यापी अनंत एवं सर्वशक्ति संपन्न सत्ता की कल्पना की गई है, जिससे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति एवं अनंत विलीनता होती है। इस परम तत्व को ही उपनिषदों में कभी ब्रह्म कभी आत्मा तो कभी केवल सत की संज्ञा से संबोधित किया गया है। ऐतरेय उपनिषद का कथन है, ओम आत्मा वा इदम् एक एव आग्र आशीत। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा एवं इदम् अग्रे आसीत। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि पहले आदि में केवल वह आत्मा मात्र था। छांदोग्योपनिषद के से ज्ञात होता है कि आत्मा एवं इदम् सर्वम्। पुनः बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मानि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम् सर्वम् विदितम्। अर्थात आत्मा को जान लेने से सब कुछ विदित हो जाता है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् एकम् एव अद्वितीयम्। अर्थात आदि में केवल एक सत था, दूसरा कुछ नहीं था। पुनः यही वर्णित है, सर्वम् खलु इदम् ब्रह्म। अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म है। इसी तरह की उक्ति मुंडक उपनिषद से भी प्राप्त होती है, ब्रह्म एव इदम् विश्वम्। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सब वाक्यों में ब्रह्म आत्मा के ही अर्थ में प्रयुक्त है। उपनिषदों में कहीं कहीं पर कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है, एवं अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, तथा प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है एवं तत्त्वमसि अर्थात वह तू ही है। इन कथनों से ज्ञात होता है कि उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के एकाकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बंधन और मोक्ष। संसार में आने पर जीव को कर्म करना पड़ता है। कर्म के दो रूप हैं। एक प्रकार का कर्म प्रवृत्ति मार्गी होता है, इसे संसार में वह बंधता है। दूसरा कर्म निवृत्त मार्गी होता है, इससे संसार के बंधनों से वह छूटता है, पर दोनों ही अनित्य हैं। इसलिए कर्म के चार फल बताए गए हैं, उत्पत्ति, संस्कार, विकार और अति या समाप्ति। ये सभी सांसारिक हैं, इसलिए कर्म अविद्या है। कोई भी कर्म सकाम होता है, इसमें इच्छाएं प्रेरक होती हैं, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार मोक्ष के लिए कर्म साध्य नहीं है, यह संसारी के लिए बंधन है। इसी के कारण मनुष्य संसार में बंधा रहता है। यज्ञादि कर्मों द्वारा ही वह मनुष्य अर्जित करता है। इससे यद्यपि वह स्वर्ग में पहुंच तो जाता है, पर पुण्य के क्षीण होने पर वह फिर संसार में चला आता है। इस प्रकार जीवन मुक्त के लिए स्वर्ग की प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग का सुख नित्य नहीं है, यही अज्ञान और अविद्या है। जो बंधन का कारण है, इसी के पृष्ठ संख्या 39। कारण अहंकार होता है, इसके परिणाम स्वरूप हम जीवन मरण के चक्कर में बंधे रहते हैं, यही बंधन है। इसी को उपनिषदों में ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि का अर्थ है बंधन या गांठ। इस अवस्था में जीव ब्रह्म आत्मा तथा जगत का सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इस बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। जहाँ बंधन टूट जाता है, दुखों का अंत हो जाता है तथा आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, वही सच्चिदानंद परमात्मा का तादात्म्य होता है। तभी अविद्या का विनाश होता है। तदंतर विद्या के द्वारा वह विशुद्ध ज्ञान को जान लेता है। इस स्थिति में जीव और परमात्मा का भेद नहीं रहता। भेद रहना ही बंधन का कारण बनता है। तभी सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं। वहाँ भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, संशय का अंत हो जाता है, कर्म क्षीण हो जाते हैं। तब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है तथा जीव और परमात्मा का एकाकार हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथिस विद्यते हृदय ग्रंथिस छंद सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यही स्थिति मोक्ष की है। इस अवस्था में नामी का नाम समाप्त हो जाता है, वह ईश्वरमय हो जाता है तथा उसके दिव्य रूप में समाहित हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे नदियां बहती हुई जब समुद्र में मिलती हैं तो उनका नाम नहीं रह जाता। यथा नद्यः स्यान्दमाना समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्याम। तब वहां न मोह होता है न शोक होता है, तत्र मोह क शोक। यह स्थिति ज्ञान का अमृत तत्व मोक्ष है। विद्या अमृतेम मश्नुते। ऊपर हमने देखा कि जीवात्मा को परात्परम पुरुषम मुपैति कहकर जताया गया है कि वहां जीव परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है। यह मोक्ष का एक रूप है जिसे शंकराचार्य ने अद्वैत की स्थिति माना है। वही यही ब्रह्म तादात्म्य है। पर दूसरी ओर कुछ उपनिषदों में कहा गया है कि भक्त भगवान के साथ सुख भोगता है, सायुज्य गच्छति या साम्य मुपैति। यहाँ एकात्मकता नहीं है वरन सानिध्य है, अतः यह द्वैत की स्थिति का बोधक है। रामानुजाचार्य ने इसी के आधार पर विशिष्टाद्वैत की मान्यता स्थापित की है। इस प्रकार यहाँ मोक्ष के दो रूपों तादात्म्य और सामीप्य का ज्ञान मिलता है। जीव का जन्म संस्कार जनित होता है, उनके पूर्व संस्कारों के अनुसार यहाँ जीव को भोगना ही पड़ता है। पर जब इस शरीर के रहते जीव को ज्ञान हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, किंतु इस शरीर के छूटने के बाद ही वह ब्रह्म में लीन होता है। जीवित अवस्था में मुक्त होना जीवन मुक्ति है, इसी को संदेह मोक्ष की प्राप्ति भी कहते हैं। इस समय वह कर्मों के बंधन को उसी प्रकार उतार देता है जैसे सांप केचुल उतार देता है। पर एक स्थिति वह है जिसमें नदियां अपना अस्तित्व समाप्त कर समुद्र में मिल जाती हैं, तब उनका न नाम रहता है न गुण रहता है। वह यह दूसरी अवस्था है, इसमें जीव देह रूप नहीं रह जाता है और तब वह परमात्ममय होता है, इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार मोक्ष दो अवस्थाओं में प्राप्त होती है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति।